Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka hardik abhinandan. Aaj karobari khabron ke saath saath aapke prashnon ko bhi hum shamil karenge. Phir arthvyavastha ho ya share bazaar se juda koi bhi sawal, aap hame seedha phone kar sakte hain in numberon par. Ye numbers hain 2331-4444. 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल. नमस्कार अमन.
नमस्कार.
कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
वेल, चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
वी बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एक्सटेंड पॉजिटिव मोमेंटम. सेंसेक्स गेन्स ओवर 550 पॉइंट्स. निफ्टी रिक्लेम्स 25,000 लेवल. मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स क्लोज मिक्स्ड. जापान्स निक्केई 225 इंडेक्स सर्जेस ओवर 4.7% एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
प्रमुख घरेलू सूचकांकों में सकारात्मक गति जारी. जहां सेंसेक्स 550 अंक से अधिक चढ़ा वहीं निफ्टी 25,000 के स्तर पर पहुंचा. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. जापान का निकेई 4.7% से अधिक बढ़ा और कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आया.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ. प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. दोनों सूचकांकों ने सप्ताह की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ पूरे कारोबारी सत्र में अपनी सकारात्मक गति बनाए रखी. सेंसेक्स 583 अंक बढ़कर 81,790 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 183 अंक बढ़कर 25,078 पर बंद हुआ. मिडकैप सूचकांक में लगभग 0.7% की वृद्धि हुई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई.
The benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty ended over 0.7% higher today, extending its rising streak to third straight session. Both indices had started the week moderately up and maintained their positive momentum throughout the session. The Sensex gained 583 points to close at 81,790, while Nifty added 183 points to settle at 25,078. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed mixed. The mid-cap index increased almost 0.7%, while the small-cap index decreased 0.2%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. मुनाफे में रहने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 3%, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक दोनों में 2.6% से अधिक और इटर्नल में 2% की बढ़त रही. घाटे में कारोबार कर रही कंपनियों में टाटा स्टील लगभग 1.9%, अदानी पोर्ट्स 1.2% से ज्यादा और पावर ग्रिड 1% से ज्यादा लुढ़क गए.
Among the sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors logged gains. Among the top gainers, focused IT advanced over 2.2%, IT rose almost 2%, and tech added 1.6%. Among the laggards, metal dropped over 0.9%, commodities as well as utilities dipped more than 0.3% each, and FMCG slipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,453 companies declined and shares of 1,827 companies advanced, while shares of 169 companies remained unchanged.
वैभव, अब बात होगी रुपये की. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज अपरिवर्तित रूप से 88.78 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. दुनिया की अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.37 पर चल रहा था. लेते हैं कॉल, अपनी पहली कॉल कलकत्ता से. कोलकाता से हमारे साथ पंकज जुड़ रहे हैं. पंकज, आप अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार मैम.
नमस्कार
जी. मैं, हमारा एक प्रश्न है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम चल रही है किसान विकास पत्र योजना, इस योजना के अंतर्गत जो भी अमाउंट लमसम हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो 9 साल 7 महीने में पैसा डबल हो जाती है, तो हमें ये जानना है कि इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना कितना सुरक्षित है, और इसके साथ ही कि बहुत लोगों ने ये सुझाव दिया है कि जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगा तो मैच्योरिटी के अमाउंट पोस्ट ऑफिस में एक बार में निकलना मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास में कैश रहता नहीं है, आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा आपका मैच्योरिटी का पैसा निकालने में, तो ये कहाँ तक सच्चाई इसमें है, इसमें करना कितना तक सही है, प्लीज हमें थोड़ा बताएं.
देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, ये 100% सिक्योर स्कीम है, इसमें आपका पैसा कहीं नहीं जाता है. पर और ये भी बात ठीक है कि जो डबल होने की बात होती है वो हो जाती है, पर ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि जो आपने समय सीमा बताई है उस समय के लिए आप इस पैसे को निकाल नहीं सकेंगे, ना आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे. तो अगर आपके पास पैसा है जो आप अगले 9-10 साल के लिए नहीं छेड़ना चाहते हैं तो फिर आप इस स्कीम में लगा सकते हैं. सिक्योर है, सरकार की है, और ऐसा मेरे मानना गलत है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है कुछ कठिनाइयां आती हों कभी, बट ऐसा मानना गलत है कि वहां पे पैसे की कोई कमी हो सकती है.
एंड वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम बेंगलुरु. वी आर जॉइंड इन बाय अयान. अयान, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
श्योर. I have two questions for Mr. Aman Agarwal.
Yes.
Sir, my two questions are, my first question is, what is the difference between, investing in an IPO versus buying a stock from the market in an intraday trade? And my second question is, sir, what are the benefits of investing in IPO? What extra do I get from investing in IPO? These are my two questions. Thank you.
Very correct. So, as the name says, initial public offering, when a company starts or is also going for new share equity, then they normally raise an IPO for raising funds. Now, the IPOs are generally raised at the face value. That means whether it is a 1 rupee or 10 rupee or 20 rupee or 50 rupee or 100 rupee share. So that's the face value. Some of the IPOs at times get raised at discount when the markets are going low. When the markets are going high, then at that time you see them at premium. But the face value is there. Now, the advantage of buying in an IPO is that when you buy, subscribe for an IPO, then it comes to the market, and now earlier you had to wait for years to come. Now it is only a question of few days and a month where the share is tradable on the market. You start seeing the market value and you can then go for trading and selling it in the market. So you get an advantage over and above. However, in case of the secondary market, you buy it from the open market, so you already know what the price is, and that's what becomes your benchmark for trading between that price and what you're going to be getting tomorrow. In the IPO, you are not sure because it takes a few days before it comes on the lists on the market, and then it could even further go down, it could go up also, so both chances are available. Now, IPO is a first-time registry. In terms of shareholding pattern, there is no advantage or disadvantage per se. You become shareholder day one. In case of a secondary market, when those shares get transferred in your name, automatically you become a shareholder. So dividend policies and benefits start accruing for you from the day you become a shareholder. So technically, there are no differences from a holding perspective.
श्रोताओं, वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का. मिलते हैं आपसे इस अंतराल के उस पार.
Welcome back to Market Mantra. Aman, the markets have always been volatile, but as we were discussing, if there won't be any volatility, how will they be called, the markets? How do you see the markets behaving? They've been continuously on the rise for three sessions now. What do you see as the future, at least in this last quarter of 2025?
Yes, you're very right. Volatility is the game for people who want to make money.
Absolutely.
And that's when only they make money. If there's no volatility, you don't make money. It's a stable life. However, in case of markets, they have been showing a positive trend. And one of the biggest indications, given the Trump mania, which has happened in the past, the wars which have happened, the economic sluggishness, even on the global front, where the world economy is going down, clearly shows the strength of the Indian economy and the strength of people across the globe, within the country and outside, believing in the Indian economy and investing in this economy. And that's why the markets are going bullish up, along with the GDP and other factors strengthening as well.
I believe two things which are increasing continuously is, one, the FDIs that are inflowing from all across the world, irrespective of US tariffs. And the other is the prices of gold. Stri dhan ab parivar ki sampatti ko kai guna badha raha hai.
Yes, we should not confuse Stri Dhan with gold. Stri Dhan is the gold which is obtained by a woman when she gets married,
mm-hmm.
and that becomes her asset, whether
True.
It is from her parent's side or from her in-law's side.
Mm-hmm.
So we should not confuse Stri Dhan with
not
gold.
At all.
So gold in general is bought by a lot of people, including men,
mm-hmm.
Even institutions like RBI,
Absolutely.
The central bank of this country, buys gold. So they don't buy Stri Dhan. So gold has been always a charm for India, and you'll be shocked to know that two-thirds of the gold production is actually consumed every year officially, and the balance one-third, even there, about 80% gets smuggled into India through different routes by people of this country. Now, that is the kind of charm which gold has. But the rising prices of gold in specific are led to two factors. One is the excessive buying by the central bank in the last 2-3 years. Second is the fact that the rupee has actually depreciated in the last couple of months. And internationally, the pricing of gold takes place at the London Stock Exchange.
True.
And there it has been stable. But because the rupee has gone down, that's why we see. The third factor has been that we have a commodities exchange in Mumbai, where the trading of 1-2 months, 3 months gold, futures and forwards takes place. Those prices have been bullish, where the traders, because we have festival months going on, they have demand for gold coming in, because next 5 months are festive months for all religions.
True that.
And marriages happen for all religions again,
Absolutely.
Across board. So these are months where there will be excessive buying of gold, because every religion, irrespective of boy or a girl, they end up buying a lot of gold for the family. And that's where we are going to see the prices go up further in the next 3-4 months as well.
बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ. एशिया के प्रमुख बाजारों का रुख मिला जुला रहा. जापान का निकेई 4.7% से ऊपर बढ़कर बंद हुआ. लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा साने ताकाइची को अपने नेता नियुक्त करने के बाद जापानी शेयर में तेजी आई. उनकी जीत से रियल स्टेट, तकनीकी और औद्योगिक शेयरों में तेजी देखने को मिली. इस बीच सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.2% से ज्यादा बढ़ा. दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.7% लुढ़क गया, और दक्षिण कोरिया और चीन के बाजार छुट्टियों के कारण बंद रहे. आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों का रुख भी मिलाजुला रहा. जर्मनी का डैक्स 0.2% से अधिक और लंदन का फुटसी 100 0.1% से अधिक बढ़ा. वहीं फ्रांस का कैक 1.4% से ज्यादा गिरा.
And before we move on to our next stories and discussions, let's take a short commercial break. Welcome back to Market Mantra, and let me repeat the numbers through which our callers can call us and talk to our financial expert, senior financial expert Aman Akralji. The numbers are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. If you're calling from outside of Delhi, you have to put the prefix of 011.
दिल्ली से नितिन जुड़ रहे हैं. नितिन, अपना सवाल पूछिए.
हेलो, नमस्कार जी.
नमस्कार.
मुझे ये पूछना है, प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में कंपेयर करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, सैलरी अकाउंट जो होता है, ये प्राइवेट बैंक में ही खोला जाता है या इसमें इसके बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं? लाइट जो भी ये अकाउंट होता है प्रीमियम अकाउंट जिसको बोलते हैं, प्राइवेट में इसकी वैल्यू ज्यादा है कि सरकारी वाले में ये होता है? और ये गोल्ड की जो क्वालिटी है और क्वालिटी किस पैमाने से नापी जाती है?
देखिए जी, पहली बात तो जो सैलरीड अकाउंट होते हैं वो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खोलती है, चाहे वो प्राइवेट में खोले या सरकारी में खोले। ज़्यादातर जो सरकारी प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने मुहिम चलाई ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स आ सकें, एम्प्लॉय बेस बन सके, अकाउंट बेस बन सके, तो इसलिए वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। सरकारी बैंकों के पास ऑलरेडी काफ़ी बिजनेस होता है तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट्स सैलरीड अकाउंट्स पे नहीं देते हैं। बट इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जब सैलरी डिस्पर्स होगी तो इमीडिएटली एक पेज पे इंस्ट्रक्शन आएंगे, इंस्टेड की पहले जैसे चेक्स दिए जाते थे उस तरीके से ना करके एक पेज पे इंस्ट्रक्शन आएगी बैंक पे और वो सैलरीड अकाउंट में चले जाएंगे, सबसे ज्यादा कन्वीनियंस। दूसरा, लोन वगैरह की फैसिलिटीज देनी होती है तो उनको पता है कि कितनी सैलरी आ रही है तो उसमें लोन डिस्पर्समेंट भी आराम से हो जाता है, जो सरकारी बैंकों में इतना ज़्यादा चलन नहीं देखने को मिला। जैसे मैंने कहा, वहाँ पे ऑलरेडी बेस उनका काफ़ी बड़ा होता है। जहाँ तक आपने बात की, जो दूसरी आप बात कर रहे थे,
He was talking about what is the difference between the two banks and he was also asking the benefits of
दोनों बैंक में अकाउंट या पैसे रखने के माध्यम में अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं है। दोनों के अंदर आपको 5 लाख की ही सिक्योरिटी मिलती है जो दिया जाती है, उसके ऊपर फैसिलिटीज आपकी प्रॉक्सिमिटी कितनी दूर है। एक जरूर दिमाग में रहता है कि सरकारी बैंक है तो ज्यादा सिक्योर है, बट जहां तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात है 5 लाख पर अकाउंट की सिक्योरिटी निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट में कहा था वो मिलती है।
एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम भोपाल, शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
Good evening, Market Mantra team. Sir, my question is about power tariffs. They haven't come down in recent years or since we have a lot of solar power coming up, solar sources coming up, and other non-polluting sources coming up like wind energy, solar energy. But power tariff in India has come down in the past 5 years. It's big. उसका क्या कारण है? क्योंकि दैट इज पावर इज वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, बी इट मेटलर्जी, बी इट स्टिचिंग, बी इट एनी अदर यू नो सेक्टर, सब में पावर लगती है और हमारी पावर के रेट यूएस से देखा जाए, रशिया से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो वाई वी आर नॉट एबल टू गेट पावर टैरिफ डाउन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर जनरली पीपल को? पावर, सोलर पावर तो ऑलमोस्ट फ्री है सबके लिए। थैंक यू।
देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि कोई टैक्सेस इसके ऊपर नहीं है, सभी स्टेट्स ने टैक्सेस हटा रखे हैं। दूसरी बात, जहाँ टैरिफ की बात है, इन्फ्लेशन जो होता है वो हर एक चीज़ के लिए होता है। महंगाई होती है, स्टाफ को पैसा दिया जाता है, रनिंग कॉस्ट होती हैं, वो कहाँ से आएंगी अगर रेट नहीं बढ़ेंगे? तो हर एक चीज़ के दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं, कम होते नजर नहीं आते, अनलेस कोई हमें ऐसा सोर्स मिले ऊर्जा का जो हमें एम्परम पार कर दे और हमें जरूरत ना पड़े या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाए। चाहे वो सोलर हो चाहे विंड हो, इनकी जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई है। जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे सोलर पैनल्स हो चाहे वो विंड मिल्स लगानी हो, उसके लिए लैंड यूज़ चाहिए हो, आपको स्पेस चाहिए हो, तो ये कॉस्ट बहुत इफेक्टिव नहीं है। इसलिए ओवरऑल हमें लगे, देखें 10, 15, 20, 25 साल में तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव लगते हैं, बट अदरवाइज इनिशियली कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे विचार में अभी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रहा, और किसी भी देश में मैंने आज तक पावर के टैरिफ्स कम होते हुए नहीं देखे हैं। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी कहीं कम होंगे, पर उन्होंने क्योंकि मेंटेन कर रखे हैं, यही एक बहुत बड़ी चीज है।
श्रोताओं, आपके और भी सवाल हम लेंगे कार्यक्रम में, मगर उससे पहले एक अल्प विराम।
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के थाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद।
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है।
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें।
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद।
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है।
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें।
कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र से हमारे पास सवाल आ रहा है के शुक्ला जी का। के शुक्ला जी, अपना सवाल पूछिए।
जी गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग।
मेरा क्वेश्चन है कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली हुआ है, और सेकंड अभी सीमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा सुना जा रहा है, तो क्या ये मोनोपोली में कुछ उसको एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ योगदान रहता है क्या, मतलब उसको सही करने के लिए?
आपने ठीक कहा। पहली बात तो जहां तक मेरी नॉलेज है अभी ऐसी कोई मोनोपोली की सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात, मोनोपोली के लिए कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन कमीशन है भारत सरकार की तरफ से। पहले MRTP एक्ट होता था, उसके अंदर कार्रवाई की जाती है अगर ऐसी कोई सिचुएशन निकल के आती है।
And we have a next caller from Gurugram. We are joined in by Vijay. Vijay, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Yeah, good evening, Market Mantra team.
Good evening.
My question is, which sectors do you think we should go for the investment for a short term and for the long term? Short term in 1 to 2 years, and long term like 5 years onwards. So just give me a brief on that.
So some of the sectors which are very comfortable to move forward in terms of short and long term both, in fact, are defense, pharmaceutical. If you're looking at short term, EV and automobiles may be a good segment to go for. Even chips structures will end up going. Banking is a sector which goes up and down, and that may also be good in the long run.
Moving on to our stories, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a successful bilateral meeting with his Qatari counterpart Sheikh Faisal bin Thani, bin Faisal Al Thani. In a social post, Mr. Goyal noted that the two leaders discussed ways to enhance India-Qatar bilateral trade and reaffirmed their commitment to further strengthening the multifaceted partnership between the two nations.
नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने देश के विनिर्माण आधार को विविधता देने और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के ट्रेड वॉच रिपोर्ट जारी करते हुए श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार करना अति आवश्यक है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालिया वित्त वर्ष में देश का कुल व्यापार 1.73 ट्रिलियन डॉलर रहा है। इसमें 823 बिलियन डॉलर के निर्यात और 908 बिलियन डॉलर के आयात के साथ साल दर साल 6% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में उल्लेखित है कि वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात रिकॉर्ड 387.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचा।
GST Bachat Utsav, which was announced by Prime Minister Narendra Modi and commenced on the 22nd of last month, is benefiting all sections of society. Today, our correspondent brings a report on the GST reforms that will boost the economy of Assam.
The new GST reforms is a big relief for Assam's weavers, farmers and small businesses. The reforms specially benefits Assam's tea industry, which now has only 5% GST, making its products cheaper and more competitive in both domestic and international markets. Apart from this, agricultural products such as Johar rice, Bokasol and Tejpur lychee are also now taxed at 5%. This will help local farmers improve their margins and reach larger markets. The tourism sector will also gain from this reform, as hotel rooms price up to 7,500 rupees per night will attract only 5% GST, making Assam a more affordable destination for visitors. The reforms are designed to drive sales, safeguard employment and strengthen rural economies during the festive period and in the long run. With Samar Singh, Akshit Vaidyan for Akashwani News, Delhi.
Global crude oil prices rose today after OPEC Plus, the group comprising the organization of the petroleum exporting countries plus Russia and some smaller producers, planned production increase for November was more modest than expected. Brent crude was trading around 0.9% up at $65.04 per barrel. And WTI crude was also trading nearly 0.8% up at $61.35 per barrel when reports last came in. And now moving on to our other story about gold and silver. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading around 1.3% up to trade at 1,19,730 rupees per 10 grams. And silver was trading 0.7% up at 1,46,740 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 1.3% की बढ़त के साथ 1,19,660 रुपए प्रति 10 ग्राम और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 0.6% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1,86,623 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रही थी.
Once again,
बहुत धन्यवाद.
And before we close, just a small brief comment on the prices of gold and silver.
जैसे मैंने पहले कहा था कि गोल्ड एक बहुत लुभावनी चीज रही है हिंदुस्तान में. हम सोने की चिड़िया भी कहा जाते थे
जी.
तो इसलिए सिर्फ गृहणियों को नहीं, बिजनेसमैन मैन को सबको गोल्ड प्यारा है, मंदिरों को भी प्यारा है.
बिल्कुल.
तो इसलिए गोल्ड चढ़ाई दिखाई देगी हमें, आगे भी देखने को मिलेगी. फेस्टिवल त्यौहार है.
बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद अमन, आप आए और आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत
नमस्कार.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend positive momentum. Sensex gains over 550 points. Nifty reclaims 25,000 level. Major Asian stock markets closed mixed. Japan's Nikkei 225 index surges over 4.7%. And crude oil prices rise. That's it in this edition of Market Mantra for now.
Namaskar. Namaskar. Market Mantra.